SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश है भारत के समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का अपहरण कर तख्ता पलटने की अप्रत्याशित घटना ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है। भारत ने इस घटना से उपजी चिंताओं के बीच एक नपा तुला बयान दिया है, जिसमें उसने वेनेजुएला के हालात पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सभी पक्षों को शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर वहां रह रहे अपने नागरिकों और छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और राजधानी कैराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा है। बहुत से देशों की भांति भारत में भी अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक संयुक्त विज्ञप्ति में वाम दलों ने न केवल वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को यूएन चार्टर का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन बताया, बल्कि मोदी सरकार को भी अमेरिका की पुरजोर भर्त्सना न करने पर तीखी आलोचना की। सुनिए भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव M.A. बेबी ने क्या कहा।
इट इज क्वाइट शॉकिंग एंड पेनफुल दैट अ नेकेड एग्रेशन हैज बीन अनलीश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका under the orders of its president Donald Trump on Venezuela, a friendly country of India, a member of the non-aligned movement, as well as the Solar Alliance. In the Solar Alliance, India and Venezuela happen to be founder leaders. So being a fellow non-aligned country, Government of India should come forward immediately, condemning the unjustifiable naked aggression of USA on Venezuela.
भारत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को AI ऐप ग्रोक से बनाए जा रहे अश्लील फूहड़ कंटेंट को तुरंत हटाए जाने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने X को आदेश जारी होने के समय से 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल शिवसेना उद्धव की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को AI चैटबॉट ग्रोक के गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिख शिकायत की थी कि कुछ लोग ग्रोक AI की मदद से महिलाओं की असली तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप में बदलकर पोस्ट कर रहे हैं, जो बेहद गंभीर मामला है। मंत्रालय का कहना है कि एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और IT नियम 2021 के तहत कानूनी जिम्मेदारियों का यदि पालन नहीं किया तो एक्स उसके जिम्मेदार अधिकारियों और ऐसे कंटेंट फैलाने वाले यूजर्स के खिलाफ IT एक्ट, IT रूल्स और अन्य लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अगर एक्स आदेश का पालन नहीं करता तो एक्स को दी गई कानूनी सुरक्षा वापस ली जा सकती है, जिसके बाद एक्स यूजर्स को ही गैर कानूनी कंटेंट के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने तिहाड़ जेल में बंद छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद को हाथ से लिखी एक चिट्ठी भेज एकजुटता और समर्थन जताया है। खालिद JNU के पूर्व छात्र हैं, जिन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला चल रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामले की सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। मेयर ममदानी ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय उमर, मैं अक्सर तुम्हारे उन शब्दों को याद करता हूँ जिनमें तुमने कड़वाहट को खुद पर हावी न होने देने की बात कही थी। तुम्हारे माता पिता से मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें तुम्हारी बहुत चिंता है। खालिद के माता पिता की दिसंबर 2025 में अमेरिका यात्रा के दौरान श्री ममदानी से मुलाकात हुई थी। मेयर ममदानी के अलावा 8 अमेरिकी सांसद भी खालिद के समर्थन में आगे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता गौरव भाटिया के माध्यम से ममदानी के इस समर्थन पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
कौन होता है एक बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला, और वो भी उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होता है जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। ये उचित नहीं है, मर्यादा पूर्ण नहीं है, और भारत की संप्रभुता की अगर बात आएगी तो 140 करोड़ भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ खड़े हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भी जनता को दूषित पानी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। यहाँ पीने के पानी का सेवन करने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे बीमार हो गए हैं। इनमें से 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सिविल अस्पताल में बच्चों की भर्ती के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा है। इंदौर की भांति यहाँ भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। प्रशासन को पानी की सप्लाई की जांच में 10 जगह रिसाव मिला। ये रिसाव स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइनों में पाए गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए 40 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो गांधीनगर से सांसद भी हैं, और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने मामले का संज्ञान लिया है। श्री सांघवी ने शनिवार को जिला कलेक्टर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि 22 डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की गई है और उच्च अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बीच इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में राज्य सरकार ने नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को हटा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दी गई 39 पेज की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार इंदौर में दूषित पानी से सिर्फ 4 मौत हुई है, जबकि मृतकों के परिजन और अस्पतालों के जरिए 15 मौतों की जानकारी सामने आ चुकी है। न्यायालय में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। इस विषय में आपको बता दें कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के अनुसार भारत का लगभग 70% पीने का पानी दूषित है। पानी की गुणवत्ता में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। लगभग 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं और दूषित पानी से हर साल लगभग 2 लाख लोगों की डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों से मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरहवा अवशेषों का राजधानी दिल्ली में उद्घाटन किया। इन पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में लगाई गई है। उन्होंने इन अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि उन्हें अपने बीच पाकर हम धन्य हैं।
भगवान बुद्ध के पवित्र रिलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिस के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे।
दरअसल सन 1898 में उत्तर प्रदेश के कपिलवस्तु क्षेत्र स्थित पिपरहवा में खुदाई के दौरान ये अवशेष मिले थे। उस वक्त इन अवशेषों को भारत से बाहर भेज दिया गया था। मान्यता है कि इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां, धातु अवशेष और उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें उनके महापरिनिर्वाण के बाद अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। और अब समाचार खेल जगत से। कई बार खेल भी राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। कमोबेश भारत और बांग्लादेश के बीच भी यही हुआ। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI के आदेश पर IPL से बाहर करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं भेजने का फैसला किया है। BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अपनी टीम के मैच श्रीलंका में कराने की मांग की है। T20 विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। चूंकि सभी टीमों के टिकट पहले से बुक हैं, इसलिए इन मैचों का शेड्यूल बदलना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश के ग्रुप स्टेज में सभी 4 मुकाबले भारत में ही होने हैं, जिनमें से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना तय है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।